بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي من الحضرات. جب میرے مرشد حیات تھے اور ان سے میری نئی نئی ملاقات ہوئی تھی تو ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ وہ جمعے کے بارے میں بہت زیادہ پرٹیکولر تھے. یوں تو ہم سبھی جمعے کی نماز کے بارے میں پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ جمعے کی نماز ضرور ادا کر دی جائے, لیکن ان کا ایک معمول اس وقت میرے لیے کچھ تھوڑا سا اچنبھے کا باعث تھا کہ وہ بہت ہی پرٹیکولر تھے, بہت محتاط تھے ایک بارے میں کہ وہ ٹھیک 12 بجے مسجد میں داخل ہو جائیں. اس میں 1 منٹ کی تاخیر ان کو کرتے میں نے نہیں دیکھا کبھی. میں چونکہ ملازمت میں تھا تو فرائیڈے ان دنوں بھی چھٹی سنڈے ہی کی ہوا کرتی تھی, تو مجھے آفس جانا ہوتا تھا. بعد میں جب بھٹو صاحب نے چھٹی اناؤنس کر دی فرائیڈے کی تو میں آرام سے یہیں کینٹ میں رہتا تھا تو قریبی مسجد میں چلا جاتا تھا, نماز پڑھ کے آ جاتا تھا. تو ایک دن مجھ سے انہوں نے کہا کہ جمعہ پڑھتے کہاں تم؟ تو میں نے عرض کیا کہ گھر کے قریبی خالد ماسک ہے, وہاں میں پڑھتا ہوں. تو فرمایا کتنے بجے مسجد میں جاتے ہو؟ تو عرض کر دیا تو مجھے بھی حکم یہ دیا کہ جا کے 12 بجے مسجد میں بیٹھ جایا کروں. اس کے بعد تو پھر معمول یہ بن گیا کہ میں شاہ صاحب کے پاس جا کے پھر 11 سوا 11 بیٹھ جایا کرتا تھا, اور پھر ان کے ساتھ ہی اٹھ کے مسجد میں جا کے اکٹھے بیٹھ کے ہم نماز پڑھ لیتے تھے. تو ایک بار کہیں 2 منٹ کی ڈیلے ہو گئی. اس دن بڑے شاہ صاحب 12:02 پہ مسجد میں پہنچے. تو جمعے سے فارغ ہونے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ آج تمہاری وجہ سے مجھے 2 منٹ دیر ہو گئی, بہت زیادتی کی میرے ساتھ. اب یہ چیزیں کچھ سمجھ میں آتی نہیں تھیں اس وقت, لیکن پھر رفتہ رفتہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں. قبلہ مرشد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے, وہ سب معاملہ خود میری اپنی ذات تک آ گیا. تو بعد میں سمجھ آئی کہ اصل میں وہ جمعے کو دوپہر 12 بجے مسجد میں کیوں جا کے بیٹھتے تھے. اصل میں جمعے کے روز ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس لمحے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے, لیکن جس طرح شب قدر مخفی ہے, اس کے بارے میں کھل کر کہیں کوئی بیان نہیں ہے کہ کون سی رات, اسی طرح اس سات کے بارے میں بھی مختلف بزرگان دین نے مختلف باتیں کہی ہیں, لیکن زیادہ تر اتفاق اسی بات پر ہے کہ زوال کے وقت وہ سات آتی ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو بھید کھلا کہ مرشد صاحب اتنے پرٹیکولر کیوں تھے کہ ٹھیک 12 بجے مسجد میں داخل ہو جائیں. اس وقت پھر مصروف رہتے تھے اپنے ذکر اذکار میں. جمعے کے روز ایک تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ انسان 12 بجے مسجد میں جا کے بیٹھ جائے, تاکہ جب زوال کا وقت ختم ہو تو انسان کو وہ ساتھ مل جائے جس میں رب تعالیٰ کے حضور کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. دوسرے جمعے کے روز انسان کو کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اگر انسان 12 बजे जाके मस्जिद में बैठा है, वो जवाल का टाइम है, उस वक्त तो नवाफिल अदा नहीं किए जा सकते। तो एक काम ये किया जा सकता है कि हम सूरह इखलास की पहली आयत अगर उसका विर्द करते रहें दिल में, जब जवाल का टाइम खत्म हो जाए तो फिर हम नवाफिल अदा कर दें तहियतुल मस्जिद के, और उसके अलावा चार नफल और अगर हम पढ़ लें, चार रकात नफल, और हर रकात में अगर हम सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ सकें तो उम्मीद है कि रब ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और हम पर करम फरमाएगा। इसी तरह जुमे के दिन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जुमे के रोज जो शख्स मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ भेजता है, रब ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। तो वो जो 12 बजे से लेकर सुन्नतें अदा करने तक का वक्त है, उसको अगर इंसान तहियतुल मस्जिद के नवाफिल, उसके अलावा चार रकात नफल और फिर इस जिक्र अज़कार में गुजार दे, तो न सिर्फ यही कि इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं बल्कि रब ताला इंसान पर इल्म की बारिश भी करता है। वो जो हमारे जहन में एक चीज है कि रब अगर मिलेगा तो तस्बीह पढ़ने से, अगर रब रहमत करेगा तो तस्बीह करने से, हकायक उससे बहुत दूर हैं। रब ताला तस्बीह रोलने से या वज़ाइफ पढ़ने से नहीं मिलता है, रब तो मिलता है कि इंसान उसकी मखलूक पर मेहरबान हो जाए। बल्कि इससे भी ज्यादा अगर मैं खुले लफ्जों में बात करूं, अगर इंसान खल्के खुदा के लिए फुटमैट बन जाए जिस पर खल्के खुदा पांव रखकर गुजरते रहे, और उसके साथ साथ इंसान इबादत भी करता रहे, तो न सिर्फ ये कि यकीन है बल्कि लोगों को बनते देखा भी है कि जो आदमी भी कल के खुदा के लिए फुटमैट बन गया, रब ने उसे लोगों के सर का हेड बना दिया है। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन इंसान जो अल्लाह की राह पे चलना चाहता है ये चल रहा है, ऐसे लोगों पर गिरफ्त बड़ी जल्दी आती है। वो ये नहीं कि अल्लाह मुआज़ल्ला अपनी राह पर चलने की कोई सजा दे रहा होता है, बल्कि रब की मेहरबानी और उसकी इनायत का सबूत है वो कि अल्लाह जिन बंदों को अजीज रखता है उनकी छोटी से छोटी कोताही ही पर इंसान को झटका देता है, उसका कंधा पकड़ के हिला देता है, जगा देता है कि तुमसे गलती हो रही है, सीधी राह पर चलो। इसीलिए आम लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जो भी नेकी की राह पे चलता है मसाइब उसकी तरफ दौड़ दौड़ के आते हैं। वो होता यह है कि इंसान से जगह जगह कदम कदम पर कोताहियां होती हैं, गलतियां होने लगती हैं, और रब ये नहीं चाहता कि वो आदमी जो मेरी राह पर चला मेरी तरफ आ रहा है वो राह से भटक जाए, रब ताला उसे झटके देता रहता है। उन मसाइब की एक दूसरी वजह ये भी है कि इंसान जितना ज्यादा खल्के खुदा का जबर मुस्कुराते हुए बर्दाश्त करता है, हंस खेल के बर्दाश्त करता है, लोगों की तरफ से लगाए हुए चरके जितनी खुशदिली से विद स्माइलिंग फेस वो बर्दाश्त करता है, लोगों की तंज, उनके ताने, उनकी तरफ से होने वाली तज़हीक, इन सबको जितना हंसते खेलते बर्दाश्त कर जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से इनामात की बारिश उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये नेक लोगों को रब इसकी सजा नहीं दे रहा होता कि तुम मेरी राह पर क्यों चले, बल्कि उसके पीछे ये हिकमत है कि इंसान के लिए इनामात बढ़ते चले जाते हैं, अल्लाह की रहमत उस पर मजीद होती चली जाती है जूं जूं अल्लाह की राह में वो कदम आगे उठाता है। हम एक गिला शिकवा ये करते हैं कि अल्लाह की राह पे चलने के बाद से माली मामलात हमारे बड़े खराब हो गए, हम पे माली तंगी आती है। ये इंसान की समझ का फेर है सिर्फ, ये फॉल्टी सोच है। जिस माल को हम नेमत गर्दानते हैं वो दर हकीकत एक फंदा है जो हमारे गले में डाला जाता है कि जितना ज्यादा हमारे पास माल है उतना ज्यादा हमें हिसाब देना है उसका। तो इसीलिए अल्लाह के महबूब बंदे, उसके पैगंबर, औलिया अकराम, साहबा अकराम बिलमूम माली तंगी का शिकार रहते हैं कि कम से कम हिसाब देना होगा। यहां एक साहब मेरे पास आया करते थे, बहुत देर आए, वो बहुत पढ़े लिखे और खासे फाइनेंशियली खासे एफ्लुएंट थे। अल्लाह ताला की उन पर जाने क्या रहमत हुई कि उनकी एकदम काया पलट गई। तो एक दिन आए तो पता लगा कि उनका लिबास मुझसे भी गया गुजरा था, हालांकि बहुत ही खुश लिबास इंसान और बड़े फाखराना लिबास पहनने वाले आदमी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया आपको, तो कहने लगे बस उनके एग्जिट अल्फाज तो मैं नहीं अदा करूंगा, उनके बात कहने का लुबे लुबाब ये था कि बात मेरी समझ में आ गई है तो मैंने सब कुछ तर्क कर दिया है, तो अब मैं चीचावतनी के करीब एक जिनिंग फैक्ट्री है साहिवाल और चीचावतनी के दरमियान, उसमें मैंने क्लर्क कर ली है। तो अपना सब कुछ छोड़ दिया, जो कुछ मेरे पास था सब तर्क कर दिया है। मैंने भी उनसे कह दिया कि कमाल रहमत की है अल्लाह ने आप पे। तो उन्हें उस जिनिंग फैक्ट्री से 700 रुपये तनख्वाह मिला कर दी थी, और ये मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उनका माहाना खर्च ये नौकरी करने से पहले मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया पर मंथ था खर्चा उनका। तो 700 रुपये पर मुलाजिम हो गए वहीं जिनी फैक्ट्री में ही, एक 10x10 की कोठरी, कमरा कहना तो ज्यादती होगी कमरे के साथ, वो कोठरी में उन्होंने डेरे डाल दिए। मालूम यह हुआ कि वो चारपाई भी उन्होंने वहां चौकीदार को दे दी कि तुम ले लो, मैं जमीन पे सोऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप जमीन पे क्यों सो रहे हैं? बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया कि आप क्यों सोते हैं। तो मैंने उनसे हंस के कहा कि भाई मेरे लिए तो बेड पे जगह नहीं है, वाइफ बेड पे सोती है, मैं जमीन पे सो जाता हूं। तो कहने लगे बस यूं ही समझ लीजिए कि वहां उस कोठरी में मेरे लिए भी बेड पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने जमीन पे बिस्तर लगा दिया। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, फॉरेन क्वालिफाइड थे, तो मेहनत से वहां वो काम करते रहे मुंशीगिरी। तो मालकान को ये एहसास हुआ कि ये साहब इतनी दयानदारी और इतनी मेहनत से काम करते हैं कि जैसे इस फैक्ट्री का ये मालिक है उस दर्द से ये काम करता है, और इसने कभी आके तनख्वाह में इंक्रीज के लिए भी नहीं कहा। अब उनको ये नहीं मालूम था कि अगर वो चाहे तो ऐसी 100 जिनिंग फैक्ट्रीज खरीद के छोड़ देगा, उसके माली हालात ऐसे थे। तो वो यही समझे कि ये बेचारा गरीब आदमी मेहनत से काम करता है। तो उन्होंने अकाउंटेंट को बुलाया और कहा कि इनकी तनख्वाह 1500 रुपया कर दी जाए। तो अगले दिन जो तनख्वाह डिस्पर्स हुई तो इनको 1500 रुपए दिए गए। तो इन्होंने अकाउंटेंट से कहा कि आपने गलती से मुझे ज्यादा दे दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मालकान ने कल बुला के मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपकी तनख्वाह 1500 कर दी जाए। तो ये उस 1500 रुपए को हाथ में पकड़े पकड़े मालिक के कमरे में चले गए और उससे जाके कहा कि अल्लाह मुझे माफ फरमाए, क्या मुझसे कहीं गलती हो गई, कोई मुझसे कसूर हुआ है। तो मालिक ने बड़े परेशान होकर उससे कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने लगे, फिर आपने ये सजा मुझे क्यों दे दी, ये तनख्वाह मेरी आपने 1500 कर दी है। तो मालिक ये समझा कि तंजन कह रहे हैं। मैं कहा कि अगर ये कम है तो आप कितनी लेना चाहते हैं तनख्वाह, बताइए, मैं उतनी कर देता हूं। तो कहने लगे, नहीं, मैं तो सच्चाई से कह रहा था कि ये मेरे लिए सजा है, मुझसे तो 700 रुपए का हिसाब नहीं दिया जाएगा रब को, तो 1500 रुपए का हिसाब कहां से दूंगा रब ताला को मैं। तो जिस माली तंगी का गिला शिकवा हम हर वक्त करते रहते हैं, नेक लोगों पर माली तंगी यूं आती रहती है। यहां वो सबसे पीछे एक साहब बैठे हैं, उनके चेहरे पे मैं बड़ी रौनक देख रहा हूं कि चलिए आज पता लगा कि मैं पिछले 25 साल से इतना माली तौर पे तंग क्यों रहता हूं, आज पता लगा कि मैं नेक आदमी हूं। ये कुछ फहमी है उनकी, कहीं कहीं बगैर नेकी के भी सख्ती आती रहती है। वहां मेरे न्याजी साहब बैठे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम ये समझते हैं कि ये मुश्किलात हैं, दरहकीकत वो मुश्किलात नहीं है, वो हमारे लिए इनाम है, हमारी मदद की जा रही है रब की तरफ से कि हम उसकी राह पर चलते चले जाएं और वो हमें इल्म से नवाजता चला जाए। जुमे का जिक्र हो रहा था, जुमे के रोज सूरह इखलास की पहली आयत अगर हम खुतबे की अजान होने तक उसको पढ़ते रहें और उसके बाद फिर सुन्नतें पढ़ना होंगी हमें, तो उससे बहुत से इनामात हासिल होते हैं इंसान को। सब एक छोटी सी गुजारिश ये है, क्योंकि मुझ तक शिकायत, लोग शिकायत बहुत करते हैं, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, वरना मुझे कोई दुख नहीं, कि वो चीजें जो यहां कई एक नशिस्तों में बड़ी सराहत के साथ बयान की गई हैं, उनसे मुतालिक सवाल आप देते हैं तो बाद में लोगों को शिकवा ये होता है कि इससे हमारा वक्त जाया होता है, और इसीलिए कहीं कहीं से आवाज उठती है कि सवाल जवाब का सिलसिला बंद कर दीजिए। ऐसी तमाम चीजें जो पहले मुख्तलिफ मौकों पर सामने आ चुकी, उनको अगर आप सीडीज पर मौजूद हैं, यहां की नशिस्तों के सिलसिले में किताबें मौजूद हैं, वहां से देख लें तो बड़ी आसानी से आपको चीजें हासिल हो जाएंगी। ये सवाल वैसे ही है, तो यह आप जरा मेहरबानी कीजिए, वो चीजें जो पहले यहां बयान की जा चुकी हैं उनसे मुतालिक सवाल न कीजिए। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं इसमें, लेकिन लोगों की तरफ से एहतजाज होता है इस बात पर। किसी सामने सवाल पूछा है कि हाजिरी क्या चीज है, क्या औलिया किराम की किसी किस्म की हाजिरी हो सकती है और ऐसे लोगों से कैसे बचा जा सकता है। हाजिरी बतौर इस्तलाह इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, कुछ लोगों का रूहानी राब्ता अगर किसी नेक शख्सियत से जब होता है तो लोग कहते हैं कि हाजिरी हो रही है, ये एक टर्म है। बसा औकात ऐसा होता है कि जो नेक लोग हैं इनको अगर कोई शख्स पसंद आ गया तो वो मुलाकात के लिए आ जाते हैं, तो उस आदमी की जारी शक्ल सूरत में फर्क आता है, उसके हाथ पांव मुड़ जाएंगे, वो होश से बेगाना हो जाएगा, और उस आलम में जब उससे आप बात करें तो वो फिर उस रूह से पूछ के जवाब आपको आपके सवाल का दे देते हैं। लेकिन ये वहीं होता है जहां इंसान की रूहानी तरबियत ना हुई हो। लेकिन जब इंसान की रूहानी तरबियत हुई हुई होती है तो ऐसा राबता होता जरूर है, लेकिन इंसान कहुलिया नहीं बिगड़ता, इंसान के होश हवास खो नहीं जाते। एक चीज याद रखिए कि रब ताला बहुत बावक्कार है, सबसे ज्यादा बावक्कार। उसको ये पसंद नहीं कि उसके बंदे बेवकार हो जाएं। तो जब कोई इस कैफियत में होता है जिसे हाजिरी से मंसूब करते हैं, तो उस गरीब का जो हुलिया हो जाता है, जिस अंदाज में फर्श पर गिरा हुआ होता है, हाथ पांव मुड़े हुए हैं, आवाजें मुख्तलिफ निकल रही हैं, आंखें पलट गई हैं, ये बेवकारी का अंदाज है। तो रब अपने बंदों को बावकार देखना चाहता है, तो उससे मुतासिर मत होइए, क्योंकि जो लोग औलिया इकराम हैं, औलिया इकराम तो बहुत बावकार रहते हैं, साफ सुथरे, बेशक पैबंद लगे कपड़े क्यों ना हों, लेकिन साफ सुथरे होंगे, बहुत ही खुश अखलाक होंगे और बहुत बावकार होंगे अपने उठने बैठने में, गुफ्तगु में, चलने फिरने में। वो एक वकार को मेंटेन करते हैं कि रब बावकार है। तो जो इतना बावकार रब है, उसका दोस्त बेवकार कैसे हो सकता है? इस साहब ने सवाल पूछा है कि लफ्ज मान का लफ्जी मायने है, बता दीजिए हम अल्लाह पर मान कैसे पैदा कर सकते हैं। अब इसको उर्दू में तो शायद मैं इसका कोई मतलब लफ्ज मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा मान का, लेकिन जब किसी शख्स को कोई एतमाद ये पैदा हो जाए, आपका अगर कोई दोस्त है उसको ये पूरी तरह यकीन है कि आप मुश्किल के वक्त उसके काम आएंगे, जब उसे जरूरत होगी तो आप मैदान छोड़ के भाग नहीं जाएंगे, उसके हवाले से कोई और आपके पास आ जाएगा तो आप उसको भी एंटरटेन कर लेंगे, तो ये जो यकीन है आपकी जात में उसका, वो मान है। एक साहब से मेरी दोस्ती है, 35 इयर्स पुरानी हो गई वो दोस्ती, मुझसे खासे बड़े हैं वो। तो शुरू शुरू में उनसे दोस्ती हुई, तो कुछ अरसे के बाद तो एक दिन ऑफिस में मेरे तशरीफ लाए और मुझसे बड़े रोब से कहने लगे, खड़े हो जाओ। अब जब आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि कोई आदमी इतने रोब से आपको कहे कि खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ा हो गया बट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। तो आए और आके मेरी ट्राउजर की बैक पॉकेट से मेरा वॉलेट निकाला और दीवार की तरफ मुंह करके उसमें से पैसे निकाले और मेरे दोबारा मेरी जेब में वो वॉलेट मेरा डाल दिया। कहने लगे मैं जा रहा हूं, और दरवाजे पर पहुंच के कहने लगे कि शाहजी मैं 100 रुपये आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। अब ये मान है दोस्ती का कि उसने ये भी तकलीफ गवारा नहीं की कि मुझसे कह देते कि मुझे इतने पैसे दे दें आप। ईमान है। उन्हीं साहब ने एक दिन मुझे टेलीफोन पर खासी बड़ी रकम के लिए कहा, तो मैंने कहा जी आपको मालूम है मैं भी आप ही की तरह सरकारी मुलाजिम हूं, इतना पैसा कहां से आया मेरे पास? जवाब क्या आया? शाहजी देयर्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, आई नीड मनी। ईमान था, जैसे तैसे भी हुआ अरेंज करके दे दी उनको वो रकम। लेकिन ईमान है, इसको मान कहते हैं। उनको मालूम है ये मेरा दोस्त है और मेरा इस पर हक है, वो दरख्वास्त करने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे इस मान से मांगना है। तो मेरा ख्याल है कि शायद मैं इसकी वजाहत कर दी हो। अब ये जो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हम अल्लाह पर मान कैसे पैदा कर सकते हैं, कोई नुस्खा बता दें, साहब ये नुस्खा मेरे पास है नहीं कोई, वरना तो मैं बड़ी तफसील से अर्ज कर देता कि कौन कौन से अज्जा कितने इसमें पड़ेंगे और फिर इसे किस तरह से आप कुंडी डंडे में डाल के पीस के इसका माजून बना के रोजाना हाफ टी स्पून खा लीजिए। ऐसे नुस्खे नहीं है इस राह में। ये टर्मिनोलॉजी अगर कोई निकाल सका तो सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान निकाल पाया कि हर चीज का एक नुस्खा होना चाहिए। इसका एक ही नुस्खा है, न सिर्फ इसके कि बंदा रब का हो जाए बल्कि रब को अपना मान ले और फिर उससे इश्क करने लगे। लेकिन इस राह का एक खतरा मैं अर्ज कर दूंगा कि जब हम ये दावा करने लगते हैं कि मैं रब का हूं और रब मेरा मालिक है, जब हम रब को ये बात कहने जाते हैं कि या बारी ताला आज से मैंने अपने तमाम मामला तेरे सुपुर्द कर दिए इस यकीन के साथ कि तू जो कुछ इनका डिस्पोजल करेगा वो मेरे बेहतरीन मुफाद में होगा, तो वो इंसान की बात को कबूल तो कर लेता है लेकिन फिर वो परखता है, फिर इंसान को चक्की के दो पार्टों में डाल के पीसता है एक बार कि देखूं ये जो कुछ इसने कहा था वो सच है कि नहीं है। तो जब चक्की के दो पार्टों में डाल के पीसा जाए तो जुबान इंसान की भले गज भर बाहर लटक आए तकलीफ के मारे, लेकिन उफ न कीजिएगा, उसको हंसी खुशी सह लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जब इनामात की बारिश होती है तो बेपनाह है। फिर ये इत्तेफाक है कि रात एक फौजी जनरल ने एग्जैक्टली यही सवाल मुझसे पूछा कि लाहौर शाही किला के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम मोती मस्जिद है, यहां नेक जन्नात रहते हैं और बुजुर्ग जन्नात रहते हैं, यहां में जाकर दो नफल अदा करने से दुआ और हाजत कबूल हो जाती है, इसके बारे में वजाहत कर दें। ये भी एक कमाल की बात है कि रब के साथ भी हमने रिश्ता क्या ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पाला हुआ है, कमर्शियल रिलेशनशिप है कि मैं किसी मस्जिद में जाके दो नवाफिल इसलिए अदा करूंगा कि मेरी हाजत पूरी हो जाए, मेरी दुआ कबूल हो जाए। ये अफसोसनाक बात है। रब की इबादत तो इसलिए की जानी चाहिए कि वो लायक इबादत है, वो हमारा मालिक है, हमारा पालने वाला है, वो इतना अजीम है कि ये उसका हक है कि उसकी इबादत की जाए। किसी मस्जिद में जाके इसलिए नवाफिल अदा करना कि मेरी हाजत पूरी हो जाए, मेरी दुआ पूरी हो जाए, मैं तो इसे अफसोसनाक ही समझता हूं। वैसे जब भी इंसान मस्जिद में जाए दो रकात नफल उसे पढ़ने चाहिए, तहियतुल मस्जिद के नवाफिल जरूर अदा करे, चाहे वहां जिन्नात रहते हों या ना रहते हों। एक रवायत यह है कि जो मस्जिद है इससे जरा हट के फसील के नीचे मजार है, असल मजार है जनाब दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब का। तो जनाब दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब के रूहानी तसर्रुफात का असर इस मस्जिद में भी मिलता है, तो इसीलिए लोग वहां जाते हैं। वजह उन्हें नहीं मालूम, ये मैं खुद आपसे अर्ज कर देता हूं। तो जिन्नात कहीं रहते हों आप, मैं तो जहां जिन रहता है वहां नमाज पढ़ने को तैयार नहीं हूं इस नियत से कि मैं यहां नमाज पढ़ूंगा तो मेरे हाजात पूरी हो जाएंगी। फरिश्ते और जिन ने तो मुझे सजदा किया है, मैं उस जगह सजदा क्यों करूं जहां जिन रहता है? कुरान में है कि आदम को सजदा किया है फरिश्तों ने और जिन्नात ने, तो जिसको उन्होंने सजदा किया है वो सजदा वहां क्यों करे जहां जिन रहता है, सिर्फ इसलिए कि वहां जिन रहता है वहां सजदा किया जाए, वैसे भी शिर्क हो जाएगा। आप वहां जरूर दो नफल पढ़िए, लेकिन नियत इसके कि ये 2, 4, 8, 10 जितने भी रकात नवाफिल अदा करना चाहें नवाफिल अदा कीजिए, लेकिन ये सोच के कि ये तहियतुल मस्जिद के नवाफिल हैं। ये मस्जिद का हक है आप पर कि जब किसी मस्जिद में दाखिल हो तो वहां नवाफिल अदा कीजिए, उन नवाफिल का नाम तहियतुल मस्जिद। सब किसी साहब ने अपना जाती मसला यहां बयान फरमाया है, मुझे तो एतराज नहीं, मैं पढ़ दूंगा, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला मसाइब से हर एक को निकाल लेता है, वक्ती चीजें हैं जो आती जाती रहती हैं, अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी वक्त नहीं रहेगा, और मुश्किल हालात में अपने आप को एक बात जरूर समझानी चाहिए कि अच्छा वक्त गुजारने के लिए अगर मैं था, मैंने अच्छा वक्त गुजारा है तो बुरा वक्त भी मुझे ही गुजारना है, मेरी जगह कोई और नहीं गुजारेगा। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते रहना चाहिए कि या बारी ताला मुझ पर करम फरमा दे और मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे। लेकिन अपनी ये इंसान की प्राइवेसी की ब्रीच है कि वो जाती दुआएं इस तरह पब्लिकली करवाने लगे, बेतौकीरी होती है इंसान की, इससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। वक्त आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो बेतौकीरी एक बार हो जाएगी वो दोबारा से कंपेंसेट नहीं की जा सकती। आप मेरे पास इस्लामाबाद में भी तशरीफ ले आते हैं, यहां भी हर हफ्ते तशरीफ ले आते हैं, सड़क पर कहीं मिल जाऊं तो वहां भी आप रोक लेते हैं मुझे, मैं नाम से पहचान पा रहा हूं, दुआ करा लेते हैं, तो इस तरह पब्लिकली दुआ करा के आप बेतौकीर क्यों हो। एक साहब ने सवाल किया है कि तक्वा हासिल करने के लिए इंसान जिल्लत को इज्जत पर इसलिए तरजीह दे कि इससे अना के बुत टूट जाते हैं या इसके पसे मंजर में कुछ और है। इंसान को किसी हाल में जिल्लत को इज्जत पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। मुसलमान जिल्लत से बहुत दूर रहता है। ये जिसको आपने जिल्लत पर महमूल किया है गालिबन उससे आपको ये इस्तेमाल गुजरा है कि फकीर लोग दूसरों की तनकीद बड़ी खुश दिली से सह जाते हैं, कोई उन्हें गाली दे दे तो जवाब में मुस्कुरा देते हैं, वो जिल्लत नहीं है, वो इज्जत है। अभी आप इतने लोग यहां तशरीफ रखे हुए हैं, अगर कोई साहब यहां आए और आके मुझे बेतरा बुरा भला कहने लगे, बदतरीन अल्फाज मेरे बारे में मुझे कह दें और मैं उस सब के जवाब में खामोश रहूं, मुस्कुराता रहूं, जब वो जाने लगे तो मैं उन्हें बड़े एहतराम से कहूं कि साहब आइए तशरीफ रखिए, रोजा है वरना मैं आपकी कुछ ना कोई खिदमत करता, तो पलट के गालियां देते हुए चले जाएं। अब आप ये फरमाइए कि आप किसको बुरा समझेंगे, मुझे या उन गालियां देने वाले को? तो यकीनी बात है कि वो जिसने गालियां दी हैं उसको बुरा समझेंगे, मेरे बारे में ख्याल ही आएगा कि बहुत तहमल मिजाज इंसान है। तो जिल्लत मुझे तो नहीं मिली। तो जब हम किसी की ज्यादती को खामोशी से बर्दाश्त करके मुस्कुराते रहते हैं और अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं आने देते, दूसरे की गालियां सुनकर भी बहुत तहम्मुल और नरमी के साथ उसको प्यार से कहते हैं कि भाई अगर मुझसे कोई कोताही हो गई जिसकी वजह से आप नाराज हैं तो मुझे माफ कर दीजिए, तो इंसान का मकाम बुलंद होता है, गिरता नहीं है। और यह अर्ज कर दूं कि सुन्नत भी यही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पलट कर किसी को उसकी सख्त बात का जवाब नहीं दिया बल्कि मुस्कुराते रहे हैं। तो जिल्लत नहीं मिलती है। हाँ, इससे अलबत्ता यह है कि जब हम लोगों की तनकीद को खुले दिल से बर्दाश्त करते हैं اور اس پر غور کرتے ہیں کہ اس نے جو تنقید کی اس میں کہاں کہاں سچ تھا تاکہ میں اپنی وہ کوتاہی دور کر لوں، تو وہ باعث رحمت ہے وہ تنقید. اسی طرح اگر کوئی شخص آ کے یہاں مجھے برا بھلا کہتا ہے اور میں اسے خوش دلی سے برداشت کرتا ہوں اور اس کے چلے جانے کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہوا مجھ سے، کیا کوتاہی ہوئی کہ اس آدمی کو یہ سب کہنا پڑا، تو وہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں گا. تو اس سے دو فائدے ہو جائیں گے کہ میری کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی میرے اندر سے اور میری انا کا بت ٹوٹ جائے گا. یہ چیز جو مجھے ستاتی ہے کہ گالی کا جواب میں گالی سے دوں، اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں، وہ میری انا ہے اور کچھ نہیں. اور یہ انا ہے جو انسان کو ذلیل خوار کرا دیتی ہے دنیا میں، تو وہ ٹوٹ جائے گی تو اس میں ذلت نہیں. مسلمان ذلت سے بہت دور رہتا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اسے ذلت نصیب ہو جائے. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رب پر اچھا گمان رکھو، رب تمہارے گمان کے مطابق معاملہ فرمائے گا، اس کی وضاحت کر دیں. حدیث یوں ہے، رب سے اچھے گمان رکھو، رب اچھا ہی کرے گا. بات یہ ہے کہ یہ انسان کو رب سے مایوس ہونے سے بچانے کے لیے یہ فرمایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی سوچ اس کے احوال پر بڑی تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے. اگر کوئی شخص نگیٹو چیزیں سوچتا ہے تو اس کے چہرے پر آپ کو ہر وقت ایک عجیب سی ٹینشن دکھائی دے گی، ایک عجیب سی بے رونقی اور رکھاپن دکھائی دے گا اس کے فیس پر. یہ اس کی نگیٹو سوچ کے نتیجے میں فیس پر اثر آتا ہے. لیکن جو آدمی پازیٹو سوچ کا حامل ہے اس کے چہرے پر ایک رونق دکھائی دیتی جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نور ہے. یہ انسان کی سوچ ہے جو چہرے سے جھلکنے لگتی ہے. تو ہم اگر رب تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ یہ خیال رکھیں، تفصیل میں جائے بغیر میں اگر ایک لفظ میں یہ بات بیان کروں کہ اگر انسان یہ سوچتا رہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، میرا کوئی کام رک نہیں سکتا جب تک میرا رب زندہ و قائم ہے، اور الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، تو یہی ایک سوچ اتنی پازیٹو ہے اور اتنے اس کے اسٹرانگ انفلوئنسز مرتب ہوتے ہیں انسان کے احوال پر کہ اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں. تو یہ گمان جو اللہ سے ہم رکھتے ہیں اس سے اچھائی کا رکھتے ہیں. اگر ایک کام کے لیے میں نے کوشش کی تو میں اللہ سے گمان یہ رکھوں کہ اللہ مجھے اس پہ کامیابی عطا فرمائے گا، یہ اچھا گمان ہے. اگر میں کسی مشکل میں ہوں تو مجھے یہ خیال رہے ہر وقت کہ میرا رب مجھے اس مشکل سے نکال لے گا، یہ اچھا گمان ہے. تو ہم رب تعالی سے اچھائی کی امید رکھیں، انشاءاللہ تعالی رب اچھا ہی کرے گا. تو یہ گمان سے یہ مراد ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.